ओम शांति। तो आज की इस छोटी सी सभा में सभी चमकते हुए सितारों के बीच अचानक एक बहुत ही अधिक चमकता हुआ सितारा हम देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने बैठे हैं। एक ऐसा सितारा जिनका हम शब्दों में कोई वर्णन नहीं कर सकते, एक ऐसा सितारा जिनको क्या कहे, ट्रेनर, काउंसलर या कंसल्टेंट, एक ऐसा सितारा जो बाबा के ज्ञान को विज्ञान और अध्यात्म की समस्वरता हार्मनी को लेकर के विगत मेरे ख्याल से 20 वर्ष से भी ज्यादा हुए होंगे सारे विश्व भर में बाबा का यह ज्ञान फैला रहे हैं। हमने उनको बहुत बार सुना है और उनकी क्लासेस सुनी है और जिस ढंग से वो बाबा के ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं उसमें बहुत रमणीकता भी है। तो आज हम सब के लिए, इस छोटे से मधुबन के इस ग्रुप के लिए, ये वरदान कहो, बाबा की ब्लेसिंग कहो कि अचानक हम देख रहे हैं हमारे बीच स्वामीनाथन भाई आए हैं, तो हम सभी उनका तालियों से स्वागत करेंगे। और मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि हम सभी मधुबन निवासी जो यहां हैं उनके लिए तीव्र पुरुषार्थ के लिए कुछ बातें हमें कहे। तो मैं आमंत्रित करता हूं स्वामीनाथन भाई से। बहुत सारे पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं, हम व्यक्तिगत रूप से तो उन्हें जानते नहीं, ना ही हमने आज तक कभी उनसे बात की है। आज पहला ही ये मौका है कि हमारी आंखों के सामने वो है और हम इतना जरूर कह सकते हैं कि ये ऐसी व्यक्तित्व है, ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसमें ज्ञान की ऊंचाई है, ज्ञान के शिखर पर है, परंतु स्वभाव में संपूर्ण नम्रता है। तो ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे बीच है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आदरणीय स्वामीनाथन भाई जी से कि हम जो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने पुरुषार्थी है, हमारे लिए पुरुषार्थ की कुछ बातें कहेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। सॉरी, मैं राइट ड्रेस कोड में नहीं हूं क्योंकि आई एम सॉरी। एक्चुअली मैं क्लास के बारे में तो हमेशा वेबसाइट में सुनता रहा हूँ, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन डॉक्टर सचिन भाई मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, आपकी आवाज को बहुत सुना है मैंने, जैसे सभी को बहुत प्रेरणा देती है, मुझे भी व्यक्तिगत स्तर पर बहुत प्रेरणा दी है। बेसिकली मैं हर दिन सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ और पांडव भवन में, एक तो बाबा की कुटिया, बाबा का कमरे से, उसके साथ साथ मुझे जो नकीले के साइड पर जो वॉकिंग है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन होता है। तो कल मैं जब वापस वॉकिंग के लिए आया तो हमारी डॉक्टर बहन जी मिले और जब उन्होंने मुझे बताया, मुझे लगता था कि ये क्लास हिस्ट्री हॉल में या कहीं चलता, मुझे नहीं पता था कि ये क्लास जो रिकॉर्डिंग होती है कहाँ पर होती है। तो कल जब उन्होंने बताया मुझे कि 5:15 बजे होता है, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा, एंड दैट्स हाउ ड्रामा प्लान अनुसार मुझे यहाँ पर आने का चांस मिला। अगले 2-3 दिन मैं जरूर रहूंगा और मैं है ना यहाँ पर जरूर अटेंड करूंगा। आज का जो टॉपिक हमारे राम भाई ने लिया, सत्यमेव जयते, उसका मैं एक छोटा सा बस अपना अनुभव सुनाकर, आपकी परमिशन हो तो मैं वॉकिंग के लिए जा सकूंगा क्योंकि आप सभी भाग्यशाली हैं जो इतने सुंदर वातावरण में रहते हैं। हम लोग वो मुंबई के उस कॉन्क्रीट जंगल में रहते हैं, तो ये हमारा हर पल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जब कोई आत्मा सत्य के मार्ग पर चलता है तो सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा के साथ साथ ड्रामा भी उनको मदद करता है। जब मैं बाबा का बच्चा बना, ये मेरी स्टार्टिंग समय का था, तो उस समय मैं कॉलेज में पढ़ाता था और बीच बीच में मुझे कोई ना कोई सेवा मिलती थी डेलीगेट्स को मधुबन लेकर आने की, तो मेरा हर 2-3 महीने में या तो पांडव भवन नहीं तो ज्ञान सरोवर में आने का चांस मिलता था। तो हमारे जो प्रिंसिपल जो थे वो कड़क थे थोड़ा, तो मैं क्या करता था, वो अपना एप्लीकेशन जो था ना, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बहुत अच्छी आत्मा थे, तो उनको मैं दे देता था और उनको मैं रिक्वेस्ट करता था कि सर मैं जब ट्रेन में बैठ जाऊं उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉरवर्ड करना, क्योंकि अगर वो प्रिंसिपल दिख जाता था ना तो फिर वो मुझे कभी कभी जाने नहीं देते थे। तो एक दिन इसी तरह सेवा का था, तो मैंने पहले से डॉक्टर तिरुमलेश्वर सर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, सर मैं आपको एप्लीकेशन दे देता हूँ, प्लीज मैं जरा आज चला जाऊं तो कल सुबह आप प्रिंसिपल सर को बता देना। उसके बाद मुझे वो वहां प्रिंसिपल के ऑफिस में साइन करना होता था, तो मैं देख रहा था सभी टीचर्स आए और मैं पीछे पीछे जाऊं, धीरे से रजिस्टर साइन करके भागू मैं, तो मैं सभी टीचर्स के पीछे पीछे जा रहा था। और जैसे ही मेरा चांस हुआ रजिस्टर में साइन करने का, और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ भागा तो मैंने कहा स्वामीनाथन वेट, मैंने कहा बाप रे क्या हुआ। और मेरे 9 बजे की आरावली की ट्रेन थी और ये करीब 3:30-4 बजे का टाइम था, तो मैं थोड़ा जल्दी में भी था। तो मैंने कहा रुको रुको, तुमको ना मैनेजिंग डायरेक्टर मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा चलो कुछ होगा, मैंने कहा इनसे तो बच गए हैं, अब जगह MD को जरा मैं चेहरा दिखाकर भागता हूँ। तो जैसे ही मैं वो हमारे इंस्टीट्यूशन के MD के कैबिन में गया तो उन्होंने कहा स्वामीनाथन कम कम, मुझे बहुत प्यार से बिठाया और उन्होंने कहा कि कल हमारी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी की एक डेलीगेशन अचानक आना का हुआ है, तो कल हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप ये पूरा प्रोग्राम को कंडक्ट और कंपेयरिंग करो, ओके। और जैसे ही उन्होंने कहा तो बाप रे, मुझे ऐसा लगा जैसे आसमान मेरे सर पर आके फूट रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेवा यहां भी थी और उन्होंने ये बोला, तो मैं एकदम खड़ा रहा हूँ। बोला जाओ प्रिपेयर करो ना, मैंने कहा हाँ मैं जाता हूँ। मैं जैसे ही बाहर निकला तो मुझे समझ में नहीं आता मैं करूँ क्या। अच्छा झूठ तो बोलना नहीं है मुझे, मेरा हमेशा ये रहा है कि भले मैं सत्य बोलता नहीं था लेकिन अवॉइड करता था, जैसे अभी मैं प्रिंसिपल को बिल्कुल बोला नहीं, लेकिन अब मैं क्या बोलूं। तो मैं धीरे से अपना बैग लेकर स्टाफ रूम में आकर बैठा और मैं बाबा को याद कर रहा था कि बाबा मैं क्या करूं अभी, मैं क्या करूं। तो स्टाफ रूम खाली हो गया था, सभी चले गए थे। अचानक हमारे एक कलीग आए, वो थोड़ा सा क्लास थोड़ा लेट हो गया होगा, और जैसे ही वो पहुंचे तो मैंने उनको देखा और वो भी बहुत अच्छा कंपेयरिंग करते, तो मैंने उनको कहा देशमुख सर एक छोटा सा हेल्प करेंगे क्या। बोला हाँ हाँ स्वामीनाथन बोलो, मैंने कल एक फॉरेन यूनिवर्सिटी का टीम अचानक आ रहा है तो एक छोटा सा प्रोग्राम कंडक्ट करना है, फॉर्मेट मुझे मिल गया है, तो आप जरा स्टूडेंट्स को सब मिलाकर कर सकते हैं। हाँ स्वामीनाथन जरूर कर सकते हैं। तो मैंने कहा आप मेरे साथ जरा MD के कैबिन में चलेंगे क्या, तो मैं उनको बोल दूंगा कि देशमुख सर कर रहे हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं कम लेट्स गो। तो जब मैं जा रहा था ना तो, लेकिन मैं अब MD को बोलूं क्या, अगर मैं कहूंगा कि मैं धुन जा रहा हूं तो सीधे मना करेंगे। तो वो बोला जल्दी चलो MD चला जाएंगे। मैंने कहा रुको रुको, और मैं बाबा को याद कर रहा था, बाबा मैं क्या बोलूं, बाबा मैं क्या बोलूं, झूठ तो बोल नहीं सकता हूं, तो प्लीज हेल्प मी। और कह रहे जल्दी चल जल्दी चल, मैंने कहा रुक ना रुक। अब मैं दोनों के बीच में कश्मकश हो रहा था। अब धीरे धीरे जैसे ही वो कैबिन के नजदीक पहुंचा अचानक मेरे फोन मोबाइल रिंग हुआ। मैंने फोन देखा तो हमारी सेंटर की दीदी फोन कर रहे थे, तो मैंने फोन उठाया, मैंने कहा यस दीदी। बोला स्वामी भाई आज आपका मधुबन जाने का प्रोग्राम है ना। मैंने कहा हाँ दीदी अरावली में जा रहा हूँ। बोला आप घर पहुंच गए। मैंने कहा नहीं अभी थोड़ा कॉलेज से निकल रहा हूँ। क्यों 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 फोन किया। तो हमारे सेंटर की दीदी ने कहा कि हमारी ना एक बहन जो है ना वो ग्लोबल हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनको हमें कुछ सामान देना था, तो आज मुझे पता चला आप जा रहे हो तो आप सामान दे दोगे। मैंने कहा दीदी जितना बोलेंगे दे देंगे, थैंक यू वेरी मच थैंक यू, टक करके मैंने फोन कट किया। और जैसे MD के पास गया मैंने कहा सर अचानक फोन आया, हमारी बहन जी की तबीयत खराब है और वो ग्लोबल हॉस्पिटल में एडमिट है, तो प्लीज मुझे बहुत सारा सामान और दवाई लेकर जाना है। अरे स्वामीनाथन प्लीज गो, वी विल मैनेज ऑल दिस थिंग्स। देशमुख सर भी थे, ओह देशमुख इज गुड, अब जाइए अपनी दीदी का ध्यान रखिए, राइट। और मैं बहुत आराम से थैंक यू बाबा करके मैं निकला। छोटी सी बात थी लेकिन मैंने उस समय पर भी मैंने ये महसूस किया कि मुझे बाबा के घर आना था, ईश्वरीय सेवा थी। लेकिन उस समय भी सत्यता को जो हमने किया ना, तो बाबा ने कुछ ना कुछ इस तरह से मदद किया जिससे मैं बहुत उस समय हल्का होकर सत्य बोलकर आया। तो मुझे लगता है कि जब हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो शायद ऐसी सिचुएशंस अगर आ भी जाएगी तो बाबा हमें वो टचिंग देगा या एक वो मदद देगा जिससे हम बहुत हल्के रहेंगे और बहुत अच्छा फील करके हम उस स्थिति को हम है ना बहुत आराम से पार कर सकते हैं। आप सभी बाबा के बहुत विशेष पुरुषार्थी बच्चों से मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा।
बहन ने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर,
कौन सा प्रश्न?
एक प्रश्न पूछा था सुनीता बहन ने कि कोई दूसरा आरोप लगाता है झूठा।
देखिए इसमें लव एंड लॉ का तो बैलेंस बाबा ने ही कहा है, तो अगर कोई इल्जाम लगाता है तो एज पर लॉ तो हमें चलना ही चाहिए। कोई अगर हमें गलत करा तो आपको सत्य सिद्ध करने का आपका भी अधिकार है। तो संविधान के हिसाब से या कोर्ट के हिसाब से आप जरूर जरूर उनको, है ना, उनको जो हमारा अगर आपको अच्छा ठीक लगता है तो उस प्रोसेस लॉ पे तो जाने चाहिए, लेकिन अंदर से उस आत्मा के प्रति एब्सोल्यूट लव एंड निर्दोष, क्योंकि वो आत्मा भी निर्दोष है, कहीं ना कहीं हमारा कार्मिक अकाउंट तो है ही, तो इसलिए अगर हम जा भी रहे हैं तो उनके सामने हम बहुत जाए, और अगर कोर्ट में भी जा रहे हैं तो बहुत स्नेह प्यार से हम चले, जो भी हमारा मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद में हम जरूर कभी नहीं आए, तो इसीलिए वो एक ड्रामा में एक सीन है, उस ड्रामा में सीन में हम बहुत सहज तरीके से आने चाहिए, सो इट शुड बी अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन लव एंड लॉ, क्योंकि जो सत्य के मार्ग पर चलता है वो उतना शक्तिशाली होता है, इसलिए जब आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हो तो कोई आपको एकदम निचोड़ दे और एकदम वो कर दे ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रांग, यू आर वेरी पावरफुल, इसलिए लव एंड लॉ का बैलेंस हम जहां तक रखें, और फिर उसके बाद जो अगर कोर्ट का केस आता है आप उसको जहां तक आपको लगता है खींचना चाहें आप खींच सकते हैं, ये तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन उस आत्मा को अंदर से हम कोई नफरत नहीं करें, क्योंकि उस आत्मा ने भी, वो आत्मा भी बहुत निर्दोष है, ऐसा मुझे लगता है।
कोई प्रश्न? आज नहीं छोड़ेंगे प्रश्न। कोई भी प्रश्न? हाँ जी।
नहीं ये जो प्रेरणा कर रहा है, इट इज फॉर समथिंग बेटर, तेरे भाने सबका भला, अब दुनिया परिवर्तन तो होनी है ना, तो वो चाहे वो न्यूक्लियर साइंस, आज भी उन्होंने न्यूक्लियर साइंस को आज के मुरली में भी याद किया है, तो वही न्यूक्लियर जिससे वो विनाश होगा उसी न्यूक्लियर के द्वारा बाबा ने कहा है कि पुष्पक विमान भी उड़ेंगे आज की मुरली का, है ना, तो आज अगर हम देखेंगे तो वो एक नई सतयुगी दुनिया में आने के लिए चाहे वो विज्ञान हो या कुछ आत्माएं निमित्त बनती है, तो उसके लिए इट इज एब्सोल्युटली ओके ना, उसमें कोई वो कोई व्यक्ति जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है, हर आत्मा या तो स्थापना के कार्य में या स्थापना के पहले वो विनाश के कार्य में निमित्त तो बनेगा ना, किसी न किसी को तो बनना ही है, नहीं उनको सजा की बात, मेरे ख्याल से हम सजा के बारे में, उनको सजा मिले या नहीं मिले, मतलब इसके बारे में सोचने के बजाय पर लेट अस एक्सेप्ट एस व्हाट दे आर, है ना, हम हाँ ड्रामा में पार्ट है ना, बहुत सारी बातें होती है जिसको हम लोग फाइन ट्यूनिंग कैसे करें ना, जैसे भगवत गीता में महाभारत में भी कहा अर्जुन को, यही कहा आप इसलिए डिस्टर्ब हो रहे क्योंकि आप सिर्फ इस जन्म को देख रहे हो, लेकिन मैं आपके आदि मध्य अंत को देखता हूं इसलिए मुझे कोई डिस्टर्बेंस होती ही नहीं है, तो इसलिए आज भी हम उस आत्मा के सिर्फ इस जन्म के पार्ट को देख रहे हैं ना, लेकिन बहुत सारा उनका एक अपना एक बहुत ग्लोबल रोल है, इसलिए सजा देना ये नहीं देना ये तो फिर टू बी वेरी ऑनेस्ट आत्मा जो होती है शरीर छोड़ने के बाद वो खुद उसको सामने आता है, जैसे चित्रगुप्त होता है ना, तो चित्रगुप्त मतलब क्या है, हमने जो भी इस जन्म में श्रेष्ठ कर्म किए या गलत कर्म किए वो हमारे सामने चित्र आता है, और जब हमारे सामने चित्र आता है तो वो आत्मा खुद डिसाइड करती है कि इसका पश्चाताप करने के लिए मुझे कौन सा रोल प्ले करना पड़ेगा, है ना, लाइफ आफ्टर लाइफ में, है ना, बुक में भी ऐसा लिखा और हम भी ये जानते हैं, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद जब वो सत्यम शिवम सुंदर के सामने आती है और हमारे सामने पूरा इस जन्म का चित्र सामने आता है, तो उस पावर के सामने मैं डिसाइड करता हूं कि अगला जन्म इस कर्म के लिए मुझे कौन सा पश्चाताप करना है, ये वो भी शिव बाबा नहीं बोलते, हाँ उनका पावर से आई डिसाइड, तो अगर उस आत्मा ने वो डिसाइड किया है तो उसके हिसाब से उसको करना पड़ेगा वो कर्म, उसका पश्चाताप है वो, इसलिए अभी मेरे ख्याल से वी शुड फोकस ऑन मोर ऑन द एक्ट ऑफ राइटियसनेस, किसी को सजा मिले नहीं मिले ये तो ड्रामा है और वो ट्रिब्यूनल बैठेगी उनका काम है, हम तो मेरे ख्याल से सत्यता के मार्ग पर चलें, बहुत खुशी से चलें।
लास्ट क्वेश्चन, पुरुषार्थ के संबंधित किसी को हो तो, पुरुषार्थ के संबंध में।
अच्छा आप ये पूछ रहे सत्युग में बहनों की उम्र कम है। नहीं, किसी जन्म में हम भाई रहते किसी जन्म में बहन रहते तो बैलेंस तो हो ही जाता है, तो
पुरुषार्थ से संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछो, पुरुषार्थ से संबंधित
उस बच्ची, क्योंकि उसको साइंस के बारे में, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना तो डिस्कवरी तो रहती ही है, क्रिएटिविटी रहती है, इंक्विसिटिवनेस तो रहती ही है, मेरे ख्याल से उनको जो बाबा की जो बातें हैं उसको भी साइंटिफिक रीति से हमें समझाना चाहिए, राइट, उनको भी जरूर बताएं, क्योंकि उससे हम उस प्रश्न से अगर हम उनको बाहर लेकर या उसको हम अवॉइड करेंगे तो वो डिस्टर्बेंस तो हमेशा रहेगा, तो वी शुड सिट विद देम, वी शुड एक्चुअली डिस्कस विद देम, उन्होंने जो स्कूल में पढ़ाई की है उनको जो डार्विन की थ्योरी बताया जा रहा है उनका जो कंसेप्ट उनको वहां से फीडिंग मिल रही है कि कहीं ना कहीं उस उम्र में वो माँ से ज्यादा वो टीचर से प्रभावित होते दैट इज द प्रोसेस ना. सो वी शुड ऑल्सो बिकम लाइक अ गुड टीचर अ गुड फ्रेंड एंड स्टार्ट डिस्कवरिंग इट टूगेदर इंस्टेड ऑफ वी हार्पिंग ऑन आवर व्यूज टू देम क्योंकि उनको पता है मम्मा ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं. तो हम ऐसे नहीं करें कि हम अपने व्यूज उन पर वो कर रहे हैं लेकिन हम कहते हैं चलो लेट्स डिस्कवर विद अ वेरी ओपन माइंड. चलो अगर वो कह रहे हैं कि वो भगवान है या उनका वो कंसेप्ट ठीक है या डार्विन थियरी राइट है या वो जो साइंस बिग बैंग थियरी राइट है तो व्हाट आर द अदर नोबल लॉरियट्स हु हैव टोल्ड अबाउट बिग बैंग थियरी लेट्स डिस्कस करके उनको ही डिस्कवर करने दीजिए कुछ लाइब्रेरी की किताबें कुछ गूगल से आई थिंक दैट विल वर्कआउट बेटर राइट. अब वाइब्रेशन तो बाबा के बच्चे तो पॉजिटिव वाइब्रेशन तो है ही.
बहुत बहुत धन्यवाद स्वामीनाथन भाई.
आप सभी से मिलकर और विशेष डॉक्टर सचिन भाई से मिलकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. इट्स माय ग्रेट यू नो सौभाग्य आप सभी से मिले. कल सुबह भी मैं जरूर जरूर आऊंगा.
ओके ओम शांति. थैंक्स वेरी मच.